विशेष करके वैष्णव इतिहास का वो बहुत कुछ ज्ञान रखते थे। उन्होंने बताया हमको क्या हम लोगों को बताया लक्ष्मी तीर्थ वो मध्वाचार्य की परंपरा में थे। उससे पहले एक कोई और महात्मा थे उनके शिष्य में कुछ एक कुली हुए उनका नाम विष्णुपुरी या कुछ वो बड़े कृष्ण के भक्त थे। माधवेंद्रपुरी जी ने लक्ष्मी तीर्थ से दीक्षा ग्रहण की मंत्र और दीक्षा और संन्यास लिया उस विष्णुपुरी से जो परम भक्त थे राधिका जी के भाव में सत्य में गोपी भाव वाला उनका भाव था इसलिए उनसे संन्यास लिया इसलिए वो माधवेंद्रपुरी हुए। इसका शिक्षण को हम लोगों को जानना चाहिए ठीक। माधवेंद्रपुरी से उनका बहुत संपर्क था वो उम्र में बहुत बड़े थे माधवेंद्रपुरी यहाँ तक कि भक्ति कल्प लता के अंकुर कहे गए माधवेंद्रपुरी जी और नित्यानंद प्रभु जी क्या है अंकुर है वो अंकुर के मुंह है किंतु ऊपर से दिखला रहे हैं
स्कंद के रूप में दिखा रहे
हैं स्कंद वो भी जो डांडियां निकलती है वो एक है अद्वैताचार्य एक है नित्यानंद अद्वैताचार्य वाली डांडी देखी होती है उसमें कथाएं प्रकथाएं बहुत अधिक है नित्यानंद वाली और दूसरी जो कथाएं ये भी कम नहीं है ये महाविष्णु है और ये महासंकर्षण के मूल संकर्षण कल प्रभु स्वरूप है महाप्रभु जी के निजा ने लिया है इसलिए महाराज का जन्म उन्हें अनुगत दिया सब रूप से नहीं चलाया स्वतंत्र रूप से नहीं ये गुरु परंपरा हमारी है हमारी गुरु परंपरा जो मान करके चलता है वो ठीक रूप में चलता है और जब भी कोई गुरु परंपरा का निर्देश करता है तो धर्म कर्म और सब प्रकार से वो कुछ आजकल ऐसे ही चेष्टा चल रही है गुरु परंपरा से भी चिन्ह होकर के चले गुरु परंपरा नहीं मानते हैं गुरु को मानते हैं तो वो चेला लोग तो जाएंगे ही नरक में अपने गुरु जी को भी पकड़ करके साथ नरक में ले जाएंगे ऐसा नहीं होना चाहिए अनुगत में रहना चाहिए गुरु परंपरा से एक लिंक है एक हार में प्रत्येक जो
बनिया
होती है उस प्रत्येक का एक एक मूल्य है उसमें से एक को भी निकाल दो हमारे संस्कृत के श्लोकों में विशेष करके वेदों में परिषदों में भागवत में यहाँ तक कि तुलसी रामायण की रामायण में उसमें एक अक्षर को निकाल दो तो एक उपाय में से या एक श्लोक में से कोई एक अक्षर निकाल दो क्या हो जाएगा बिखर जाएगा इसलिए गुरु परंपरा की पूर्ण ये परंपरा जो ब्रह्मा और कृष्ण से लेकर के अंतिम तक इसको मान करके चलना हमारा कर्तव्य है। इसी की श्रृंखला में हम आ जाए व्यास पूजा महापुरुषा का चरब गुरु परंपरा की धारा में जब व्यास पूजा करने के लिए बैठे निर्णय हुआ व्यास पूजा कर होगी सब लोगों ने कहा कौन कौन कहा वहां पर कौन कौन थे पंडित गदाधर पंडित तरुण दामोदर आचार्य पुरानी गुप्त जितने भी भक्त थे सब लोग एकत्र हुए और स्थान दिया गया शिवास मंदिर सब उद्यास इतना भार कौन कौन करेगा तो शिवराज पंडित ने हाथ उठा करके कहा अरे गुरु बामना भक्त
वहां पे होगा दस या पंद्रह ही बामना
रामनेन्द्र
उन्होंने कहा कि हमारे घर में हो अरे तुमसे नहीं हो रहा
है
ये तो बहुत इसमें बच्चा बहुत कुछ लगता है बहुत कुछ खर्च होगा अरे नहीं हमारे घर में पान है
सुपारी
और सुपारी की हुई है हमारे घर में फूल भी है बगीचे में निकलने में गंगा जी बह रही है घरे से घरे घरे पानी लेकर चले जाएगा चंदन हम पीछे रख सकते हैं और पूजा की पद्धति भी हमारे पास है। और क्या चाहिए, हम लोग यहाँ कहेंगे जब प्लान कर रहे हैं कहेंगे कि कितने आदमी आएंगे, 1000 आदमी आएंगे, 1000 आदमी को प्रसाद देने में 1030 रुपया कितना हो गया,
1000
पूजा होगी। उन लोगों की परिकल्पना ऐसे नहीं थी, हम लोगों की परिकल्पना ऐसे करते करते थोड़ा सा हम लोग उसको करते ज्यादा दूर चले जाए, इस डर से हम लोग ब्याज पूजा करने ले नहीं सकते। जी इतना रुपया नहीं ब्याज पूजा करते थे, हमारी ब्याज पूजा क्या इन चीजों में होती है, कहते हैं कि ब्याज पूजा करने में शिष्य को तैयार होकर के आना होगा, सब लोग सबको जब तैयार होकर के क्या तैयार कहेंगे साथ में रुपये चाहिए, पैसे चाहिए, सोने के सिक्के चाहिए, भूख के लिए खड़ा रखने के लिए एक सोने का सिंहासन के लिए बात का रख करके पूजा करें। और गुरु जी को ऐसे उपहारों से सोने के या एक एक 500 रुपये रुपया न लो तो माला रख करके गुरु जी को पहना दे, ये ब्याज पूजा, ये ब्याज पूजा नहीं है। इसमें कहा हुआ चैतन्य भागवत में जो पूजा ब्याज की हुई क्या हुई, नित्यानंद प्रभु जी दूसरे दिन सब लोग तैयार हो करके आ गए शिवाचंद्र में, पूजा की सारी व्यवस्था एकदम प्रस्तुत थी, फूल फूल पर चंदन और जो देवी चाहिए सब की थी। शिवाचंद्र जी कह रहे हैं जिसे शिवाजी आप पूजा आरम्भ कीजिए, अभी आ रहे हैं निराई पंडित जी भी आ रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, जब जब कुछ कर हूँ और कुछ क्या बैठे हुए महाप्रभु जी आ गए, सब लोगों ने देखा कृपा की पूजा नहीं कर रहे हैं क्या, हम लोग यहाँ पर विचार करते हैं कि हमारी पूजा हो रही है, हम अपनी पूजा कराते हैं, आजकल आजकल ये सब एक बड़ा भारी एक गड़बड़ चल गया है, ये लोग समझते हैं आजकल के नौसिखिए लोग ये ब्याज पूजा के दिन हम अपनी पूजा कराएंगे, सब देश विदेश से लोग आएंगे और पूजा की बहाल इत्यादि हमें देंगे, इसमें कहा है नित्यानंद प्रभु से बढ़कर के कौन गुरु है, उनसे महाप्रभु जी से बढ़कर के कौन है, उन्होंने ये कहा कि हमारी पूजा करो, नित्यानंद प्रभु को पूजा का भाव दिया गया, अब वो चुप जाते थोड़ा समय बीतता गया, महाप्रभु जी को पधारे, लोगों ने कहा जैसे ये पूजा कर ली जाए, अरे त्रिपाठ जी पूजा ब्याज पूजा आरम्भ कर दीजिए, अरे दोनों देख रहे थे निकट है तो महाप्रभु जी धीरे 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 उनके निकट आए, और जब उन्होंने निकट आए अरे पूजा आरम्भ करिए, हाँ उस सभी खड़े हो गए और जो माला रखी हुई थी पान सुपारी जो कुछ था उनके सामने उनको अर्पण करके और पूजा उनके गले में, बस यही पूजा किसकी पूजा हुई, समस्त दूर तत्वों का जो मूल है उनकी क्या पूजा, किसी व्यक्तिगत किसी की पूजा हुई हुआ इसको समझना चाहिए, आप लोग भी समझिए व्यक्तिगत पूजा गुरु नहीं लेगा, यदि गुरु लेगा नर्क में जाएगा, इसलिए यदि कोई देता भी है तो उस उपहार को लेकर के अपने गुरु पार्षद में इसमें दे दिया जाए, और वो क्या करें तो छात्र से नित्यानंद प्रभु जी को और नित्यानंद प्रभु से चंद महापुरु जा सकते, ये गुरु व्यास पूजा की पद्धति, व्यास पूजा कोई लौकिक पद्धति नहीं है, ये पारमार्थिक पद्धति है अपनी श्रद्धा को पुष्पांजलि देने के लिए, उस व्यास के प्रति हम लोगों को कृतज्ञ रहने के लिए समझाने के लिए ऐसा किया, ये व्यास जी ने क्या हमारे लिए किया, जिसकी तुम नहीं समझते तो बेकार का यह ब्याज पूजा है, उस ब्याज पूजा में ब्याज जी का तुम स्थानी हम लोग आज तक जितने भी ब्याज पूजाएं होती हैं उस ब्याज जी का तुम स्थान नहीं, बस गुरु जो आदमी गुरु बने हैं बस वही बैठे और उनके बड़े अच्छी तरह से रुपये पैसे धोती कपड़े और अलंकार इत्यादि दे सकते उनकी पूजा रुपये, जो जितना भी रुपये आप गरीबों दे सके वो उतना ही बड़ा उनका शिष्य है, ऐसा नहीं आजकल किसको सभा मापने का कोई यंत्र है ही नहीं, किसी के पास ये सभा को माप करके ये देखे जो कितनी सरकार से एक तुलसी का पत्ता भी अर्पित करता है, इसलिए व्यास पूजा का मूल उद्देश्य चाहिए। व्यास जी की पूजा और उनके माध्यम से भगवान की पूजा, राधा कृष्ण की पूजा या श्री चैतन्य महाप्रभु जी की पूजा हो, ऐसा होना चाहिए। तब तो ये व्यास पूजा हुई। जो गुरु अपने शिष्य को लेकर के अपनी सेवा में लगाता है ये गुरु का गुरु है, उसे कृष्ण के चरणों में अर्पण कर दे, ये व्यास पूजा का काम कर दे। इसलिए नित्यानंद प्रभु जी जगत गुरु पदे प्रभु है, इन्होंने इस धारा को लिखा है। हम लोग भी किसी रूप में चलेंगे, इसे अधिक नहीं चाहिए। दूसरी बात, नित्यानंद प्रभु के संबंध में बहुत समय हो गया, हम लोग को भी एक जगह जाना। मेरी इच्छा थी सभी लोग कुछ बोले, 4 बजे सब लोग आ जाए, तो 4 बजे तो कार्य नहीं थे और वक्ता लोग भी नहीं। अब ब्रह्मचारी जो हमको कहते हैं कि थोड़ा सा बोलो, ब्रह्मचारी जी हमारे कहते हैं एक नवीन घोड़े की तरह सुस्त घोड़ा की तरह लगा, उसको लगा करके उस पर घुड़सवार बैठा है और थोड़ा सा चाबुक दिखाया या न दिखाया, दोनों पहले पखड़े होकर के सब शब्द वो पकड़ में ले जाता, इतना सब तो ज्ञान और शक्ति का ज्ञान। बोलते बोलते उनका मालूम होता है, हमने कुछ नहीं कहा, ये अच्छा लगता है। मैं इसे बहुत प्रसन्न होता हूँ देख करके, ये उनका होना समाप्त नहीं है, बोलने की खूब आकांक्षा हो रही है। गुरु की वर्णन करने में अपने गुरु जी की वैष्णव की कृष्ण का गुणान करना बहुत ऐसा लक्षण यदि आ जाने किसी में, मैं समझता हूँ वो के साथ को हमारे ब्रह्मचारी जो सभी लोग ऐसे जिनको समय को 2 घंटा 1 घंटा से कोई रुकना नहीं चाहता। हमारे जो आनंद जी हैं वो तो 3 घंटा 4 घंटा के पहले रुकने वाले होते हैं। बहुत खुशी की बात है। तो जैसे भी नित्यानंद प्रभु जी का आदर हम लोग सर एक जगह समय नहीं, मैं कल तो हम लोग जाएंगे वृंदावन,
परसों जाएंगे तो
हमको कर ही कर सकल भी मैं इस विषय पर बोलेंगे। और विशेष रूप से आप लोग 5 बजे आ जाइए यदि सुनना चाहते हैं, 5 बजे से लेकर के हम लोग 6-7 बजे तक जैसा होगा हम लोग करें। आज यही तक समाप्त हो, नित्यानंद प्रभु जी हम सब पर कृपा करें और कृपा करके मुझे एक चीज थोड़ा सा बतला दो। नित्यानंद प्रभु बलदेव के रूप में बलदेव जी समस्त प्रकार की सेवा करके भी संतुष्ट नहीं हो सके, कोई भी सेवा करें, बात कर रखते सब तरफ से सब प्रकार से सेवा करके संतुष्ट नहीं रहते। देखो बलदेव प्रभु जी का श्रृंगार रथ में क्या योगदान है, बलदेव प्रभु आ जाने से वो श्रृंगार रथ जो परस्पर राधा कृष्ण समझे ये बंद हो जाता है, लोग समझते हैं नहीं नहीं ऐसा मत समझो, रथ की उस श्रेष्ठता को बढ़ाते हैं। जैसे राधा और कृष्ण कहीं मिलने वाले थे उसी समय में बलदेव प्रभु जी कहीं से आ, अब देखो उसमें राजा जी लज्जित होकर के घूंघट निकाल करके और दूरी से उनको प्रणाम करेंगे और कृष्ण के भावों पर चेहरे पर कैसे कैसे भाव दिखोगे और राजा जी के हृदय में भी कैसे कैसे भाव उनके मुख चरण पर प्रतिबिंबित होंगे, ये वही लगा सकता है जिनको इसकी चारक का ज्ञान है, अन्यथा नहीं हो सकता। मिलने में वो आनंद नहीं जो कि बलदेव प्रभु के आ जाने से कुछ लज्जित होकर के दोनों उसमें जो भाव उत्पन्न होते हैं, ये बहुत उससे किसी को कहते हैं बिना। इसीलिए नित्यानंद प्रभु जी महाप्रभु जब विराधा भाव में अविष्ट हो जाते थे तो जरा दूर हो जाते थे, उस समय राधिका जी आता महाप्रभु जी भुवन मान काम करें भाव में अविष्ट हो गए। बलदेव प्रभु जी जैसे इसको बाह्य ज्ञान नहीं है राधा जी को, इधर स्वयं ही दर्शन दूसरे स्तर भी काट करके दर्शन करते हैं, ये बलदेव प्रभु जी बड़े रक्षित हैं। इसलिए जब उनकी इच्छा पूर्ण नहीं उतनी हुई तो अनंग मंजरी के रूप में वो अपने आप पहुंचे राधा जी के बहन के रूप और बाद में अनंग मंजरी के रूप में उन्होंने ग्रहण कर लिया जहां से माफी इस तरह से नित्यानंद प्रभु समस्त रस रसानाम आधारम रसाधारम आधारम रसिक वर्षम रसाधारम सारम पवित्रतारम स्मरण नित्यानंदास्तकम जो नित्यानंद प्रवृत्ति क्या क्या रसानाम आधारम आधारम पहले दूसरे श्लोक में आधार कहा गया, अब इस अंतिम श्लोक में कहा गया आधार रसानाम आधारम सरसों के आधार है। कौन सा द्वादश रसों के आधार है? आधार माने खजाना जिसमें ये सभी रस और रसानाम आधारम समस्त रसों के आधार है। और रसिक वर्ग सदवैष्णव धन रसिकों के हृदय के वो संपूर्ण धन कौन रसिक
माता के
निताई गौरंग नम्र और कोमल चित्त को लाभ आनंद देने वाले ऐसे चित्त से वचन हैं। कोई भी स्त्री अपने कोई मैंने गोपियों के लिए कहा है अपने सतित्व को एक सेकंड के लिए भी नहीं रख सकती, लोक लज्जा को भी नहीं रख सकती, घर पे उनका चित्त हो जाता है, रूप जैसा है और वैसे ही शक्ति इनकी बोली है, इतना मधुर बल्कि मधुर से मधुर है। किंतु कृष्ण की मुख से निकली हुई जो वाणी है प्रिय, ये कितना प्रेम से निकला हुआ परिहास में वचन कैसा, कहां से रहने तुम कौन है यहां आ गई? तो उधर से उत्तर आता है तुम जानते नहीं, तो जब जानता तब पूछता क्यों? तो तुम जानते नहीं जैसे मैं कौन हूं? राधा जी जैसे कभी मधुर वाणी से कृष्ण का चित्त टूट गया और कृष्ण इतने मधुर रूप से कह रहे हैं मैंने क्या इसमें रस का समुद्र मुख का समुद्र सिमर रहा है। उस वाणी इन्होंने कहा जैसे तुम नहीं जानते, तो मैं जानता हूं कि वो कुछ और है, बस ये जानता हूं हमारे बगीचे को तुमने चौपट कर दिया राउंड का और जितने अच्छे अच्छे फूल है तुमने चूरा दिया और ये तुम्हारी पत्नी ने किया। हाँ आज परम धार्मिक को मैं देख रही हूं जो सामने ऐसे परम बचपन से ही परम धार्मिक जिसमें कहते अच्छा बचपन से मैंने क्या कर दिया अधार्मिक हो गया, तुम बड़ी भारी धार्मिक हो। धार्मिक इसलिए कहा कि जन्म से ही पूतना के प्राणों को आपने चोरी कर और ऐसा कोई ब्रह्म धर्म नहीं जहां पर कि आपकी यश और धार्मिक भाव व्यक्त करें ऐसे आप पानी समझा और इससे पेट नहीं भरा तो उसमें की लड़कियों की कपड़े को चुरा दिया, ये तो और भी उन्नत धर्म और इससे परम धर्म। और जो समस्त वृत्ति लड़कियों को बुला करके राष्ट्रीय, ये तो आपकी परम धर्म है, उसका धर्म इत्यादि सत्य पर करना ही आपका धर्म इत्यादि जो परस्पर की जो बातें हैं। ऐसे ही सन्धर्म रम्य वचना करणानंदी और कैसा सन्नर्म परिशाद परम मधु परम आनंद एक एक बात ऐसी सुंदर सुंदर सर ये कृष्ण को आनंद से भर देती है या राजा जी को या गोपी को आनंद से भर देती है। राजा जी कहती हैं जलन से ऐसा उपाय करो, ये गुप्त महाशय जी बड़े अपने को बलवान समझते हैं, इसलिए पौरुषी लीला में पुरुषों के जो कार्य उसमें तो हम लोग को जीत लेते हैं, अब ऐसा कोई बात करो जिससे इनको अपने फंदे में डाल करके हम लोग इनको जीत तभी सब सुस्ती बजाते हो जाएगा। तो कैसे तभी पाता का खिलान न कर जब कृष्ण हार जाते हैं राधा जी कहती हैं ये जो चारणों जो गौरिये होते हैं इनका काम नहीं है, गलिए के पीछे पीछे नदियां लेकर के चलो और उनके गोबर लेकर के इधर उधर घूमो, यहाँ पर भक्ति मानो का काम है, यहाँ पर आपकी अकल नहीं चलेगी। उसमें मधुमंगल इत्यादि और कृष्ण की जो बातें हैं ऐसे परिहास होती हैं उनको कहते हैं कि करुणानंदी हम लोग के ही मन में इतना आनंद देता है तो कृष्ण के लिए तो बात ही क्या, इसलिए करुणानंदी कहो तो कृष्ण के लिए करुणानंदी या राधा जी के लिए करुणानंदी, यहाँ पर राधा जी का प्रसंग है इसलिए राधा जी, राधा जी के करुण में आनंद बढ़ाने वाला नर्म सर्म रंग वो क्या करती है। प्रिय प्रेम विक्षण विहरण
ध्यान
मंगल रहस्य संविदम या करणानंदी ये सब हमने वचन सकृष्ण यदि किसी कोई सुने ना कृष्णा चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि कोई भावुक भक्त भाव की स्थिति में कृष्ण का रूप देखा और मूर्खित हो गया तो कृष्ण आकर के मूर्ख लिए हुए उसके पास में बैठ जाते हैं और कहते हैं उठो 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 सखा उठो या सखी उठो उनकी बात को सुन करके चल उठता है और फिर इस बातों की चिंता करते माध्यम तक फिर उसी को और फिर कृष्ण स्पष्ट करते हैं कोमल और वो फिर उठ करके देखता है फिर उनके सुकुमार भाव को देखकर फिर उसी इस तरह से कृष्ण की पांच प्रकार की जो पांच प्रकार के लिए रस उससे साधक विकल हो जाता है, वो एक के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरा चौथा सुनता है और यहाँ पर मुश्किल है एक ही समय में समस्त इंद्रिया कृष्ण के इन पांचों रसों में एकदम खुल जाती है आकर्षित खुल जाती है, मन उसी एक थोड़ा क्या करे उसी को ये आगे बतला है। ये रम्य वचन ये क्या करते हैं गोपेंद्र सुतः सरस्वती गोपेंद्र नंदन के ये पांचों हैं चरण इसको हमारे मन को कोटिंदु सुशीतांग कोटिंदु करोड़ों करोड़ चंद्र सुशीतता को पराभूत करने वाली कृष्ण के अंगों की जो शीतलता इतना स्निग्ध इतना सुशीतल और उसमें सुगंध भी। ये सागर के चित्त को तो बात क्या, राधा जी के चित्त को भी लाल करके क्या करता है। पार्थिव पत्रकार में चुट्टी में चला गया, लज्जा कहां चली गई, लोग लज्जा धर्म कर्म सब सौराध्यान मृत संप्लवा आवृत जगत पीयूष रंगाधर। कृष्ण के अगर हम इसका वर्णन कर रहे हैं सौरभ सौरभ तीर को कहते हैं सौराध्यान मृत संप्लवा नासिका को सौरभ। कृष्ण के अंगों की ऐसी सुंदर सुगंध है जब कभी भी जैसे कि उठव गए ब्रज में तो कहती है जैसे ये कौन है, चांद है किंतु चांद नहीं है, किंतु कहते मैं जानती हूँ ये कौन है, कृष्ण का दूत है। कैसे समझ लिए कृष्ण का दूत है, कृष्ण के अंगों का उतरा हुआ ये माला और उनके कपड़े का पहन करके आया है। यहाँ देखने से तो भूल हो जाएगी, हो सकता है कि वैसा दूसरे का हो, किंतु एक चीज है जो कभी भूल नहीं कर सकती, निर्णा भूल नहीं कर सकती, क्या नहीं भूल कर सकती। इस फूलों में जो सुगंध आ रही है वो फूलों के सुगंध को भी पराभूत कर प्रोणीभूत कर कृष्ण के अंगों का सुगंध आ रहा है। कृष्ण ने इसको धारण किया होगा, नहीं तो ये सुगंध इसमें आ नहीं सकते, इसलिए कृष्ण के दूध को छोड़कर वो भी प्रिय दूध होगा तब, इसलिए कृष्ण के अंगों का ये सुगंध यहाँ पर है, इसलिए ये दूसरा कोई इसको दूसरे को नहीं मिल सकती, इसलिए कृष्ण का। दादाजी कृष्ण के द्वारका जाने पर सोच रहे हैं, विरह में होते 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 ऐसे ब्रह्म की स्थिति पहुंची कि उनको यह भ्रम हुआ ये कृष्ण द्वार आ गए, भूल गई कि वो द्वारका गए, कहीं छिप रहे और उनके सामने आ गए। सामने आने पर राजा जी देखती हैं कि उनका कोई आंख बंद हो गया, कहती हैं पहले तो ललिता दिशा था, फिर मुस्कुरा उठती हैं उसी भ्रम में, और मुस्कुरा कर कभी मैं समझ गई, कैसे समझ गई, अरे ये तो कृष्ण के अंगों का ये गंध आ रहा है, इसे जरूर कृष्ण तुम ही ये आर्य हैं या लंपट हैं, आर्य वही चोर है, ऐसे करता है। तो कृष्ण को समझा पद पहुंचाने के लिए ये अंगों का नासिका का घ्राण ऐसा है जिसको आदमी को पागल बना देता है, गोपियों को पागल बना देता है, और इस पागलपन के कारण उनका जितना पापी वर्ष लोग धर्म लज्जा तीन जो कुछ है गुरुजनों को सामने देकर के भी लज्जा करना ये भी सब। ये है उनका गंध सौरभ्यामृत, अमृत को भी पराभूत करने वाला या सुगंध नहीं जो कुछ सुगंध है उन सबको पराभूत करने वाला ऐसा कृष्ण के अंगों का ये मनुष्य बन जाए। और आवृत संप्लवावृत जगत पीयूषम पीयूषमाधव अभर पीयूष पीयूषरम अभर। कृष्ण का ये मुखारविंद का अगर अमृत वो कहता है इतना अमृत है वो ये पीयूष को भी कोटि कोटि बार पराभूत कर दे, पीयूष के अधिक कोई अधिक सुस्वादी चीज नहीं है कृष्ण, किंतु एक कण के द्वारा उसके समस्त माधुर्य को ये पराभूत कर देने वाली कृष्ण की अधरामृत है, जो कि सब गोपियों के उन भावों को जो पहले बतलाया उनको क्षण मात्र बुला करके एकदम कृष्ण के इन पांच प्रकार की जो माधुर्या है उनका समुदय उसने इनको अतूल गोपेन्द्र श्री गोपेन्द्र सुत कर्षति बलात् पंचेन्द्रियाणि आदि में बलात् आकर्षति बलपूर्वक आकर्षण। अब इसका चैतन्य महाप्रभु जो अर्थ कर रहे हैं ये चैतन्य महाप्रभु के इस अर्थ का ये जो मैंने सूचना है कृष्ण रूप शब्द माध्यम के पहन में जाए देखी जो भी पंचजन एक अश्व मोर मन चल पंच अनाज दिखेगा कृष्ण का रूप कृष्ण के मधुर वाणी कृष्ण का मधुर वाणी के मुखार से निकलना कृष्ण का कोमल स्पर्श मैंने अंगों का कोमलता सौरभ कृष्ण के अंगों का सुगंध और अदर कितना नंबर एक दो तीन चार पांच ये पांच ही ज्ञान माध्यम से कहा ना जाएगी पांचों का माध्यम से कहीं भी जा सकते ये पांचों समुद्र हैं और ऐसे हैं जो बड़े बड़े पर्वतों को भी अपने अंदर में स्वागत कर देते हैं देखी लोगी पंच देखी लोग लोही पंच एक अष्टम हमारी पांच इंद्रियां हैं ये पांच डकैत हैं डकैत किसको कहते हैं अपनी चीज न रख करके दूसरे की चीज को हड़पना चाहना जबरदस्ती लाठी के बल पर हड़प लेते हैं उनको कहते हैं दस इंच जाता है तो ये पांच जन तो डकैत हैं और ये एक अष्टम अतः कृष्ण के ये पांच हैं एक साथ में एक ही अक्षर वह है महाप्रभु जी का मेरा मन अर्थात राजा जी का मन और पांचों इस पर सवार हो गए और वो अपने अपने विषय की तरफ में दौड़ रहे हैं तो विषय क्या है कृष्ण का रूप रस गंध सब इतना आकर्षण कर रहा है कि पांचों उनके तरफ में लुटना चाहते हैं लुटता है कब एक आदमी ने देखा इसके घर में पूरा माल है आज बैंक से लाया है एक लाख रुपया या कोई चीज ऐसी है अब ये उसको अंदर में विचार नहीं होता यदि मैं पकड़ा जाऊं तो क्या होगा क्या हुआ? वो ऐसे उसमें लुप्त हो गया कि प्राण जाय बल वचन में जाए कि प्राण भले ही चला जाए किंतु इसको ले भर के रहना भले ही उसको मार डालना है कोई बात नहीं मैं मर जाऊं तो मर जाऊंगा भाई देखो ऐसा मत करो दूसरे चीज का हड़पना से पाप होता है नरक जाना पड़ता है इसी पे परवाह नहीं उसको डर है जब दस पांच आदमी को मार करके भी मैं ले आऊंगा और पाप हमको भूलना पड़ेगा नरक जाना पड़ेगा इसके भी परवाह नहीं करता कुछ चिंता नहीं करता सब डकैती ही करता है अरे देखो यदि तुम पकड़े जाओगे तो जेल में जाओगे और क्या जेलखाने में तुम्हारी दुर्दशा होगी कोई परवाह नहीं अच्छा मान लीजिए यहां नहीं पकड़े गए तुम्हारी कोई भी पूछताछ नहीं किंतु नरक को जाना पड़ेगा ना उससे बच नहीं सकते कोई परवाह नहीं अच्छा पकड़े जाने का जो न्यायालय में होता होगा और तुम्हें पीट करके यदि पकड़ लिए गए उसी समय में तो क्या होगा पीट पाट करके तुम्हें मार डालेंगे कोई परवाह नहीं हमको तो लेना ही ऐसा ही लोग कृष्ण के इन पांचों के प्रति जिनका है वो डर है इसमें सखी हो तुम मोर दुख रहता देखो ये पांच दिशाओं में जा रहे हैं एक क्या है रूप इस तरफ में कौन जा रहा है सौरभ की तरफ में कौन जा रहा है मधुर शब्द की तरफ में कौन जा रहा है स्पर्श किसके लिए जा रहा है और बाकी का जीवा का ये पांच एक घोड़े पर बैठे हैं। अतः मन के सहारे ये समस्त विश्व का आरस लेते हैं, ये समझो। आंख देखती है किंतु आंख देख करके भावना कहां जाती है, कैसे लेता है?
मन के
मन न रहे तो आंख केवल देखने से ही कुछ नहीं होगा। मन उसमें रस पैदा करता है, कान से सुनने में रस की अनुभूति कौन करता है? कान करता है, कान को कुछ पता नहीं। आंख देखता है उसका कुछ माधुर्य साधन आंख करती है, वो कौन का? आंख के माध्यम से मन करता है। कोमल है कि कैसा है ये कौन करता है? ये स्पर्श करता है। और जीवा का रस, जो रस कैसे मालूम होता है जीवा से? ये सारा जगत इन पांच प्रकार के विषयों में अपने इंद्रियों को पांचों को लगा करके रस अनुभव करना चाहता है और वो मरता है। कृष्ण विमुक्त हो माया इसी के द्वारा समस्त जगत को आकर्षित करके ऐसा कर दिया है। जान रहे कि स्त्रियों का संग बुरा है, पुरुषों का बुरा है, तभी नहीं मानते। आदमी मार रहा है कुत्तों को, मानते हैं? शुक्रों की तरफ में देखो, सारा प्राणी, पशु पक्षी कीट पतंग लता पेड़ इन पांचों के द्वारा बधा हुआ है। धर्म का विचार करते हैं, तत्व का विचार करते हैं, सब कुछ देखते हैं, किंतु मन को अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते। ये मन ही सबका ये है। सब मन एक घोड़ा, किसका? महाप्रभु जी का, राजा जी का मन, विशाखा जी का एक तो घोड़ा। और जो पांच डकैत चढ़े और पांच वस्त्रों की तरफ निकल गए, एक पूरब की तरफ, एक पश्चिम की तरफ, एक उत्तर की तरफ, एक दक्षिण की तरफ, एक ऊपर या नीचे। अब एक ही घोड़े को पांचों एक साथ में लगाम कसकर और पांचों हंटर या कोड़ा लिए हुए हैं, लगाम खिंचाओ लगाया घर उधर जाने के लिए, जैसे ऐसे किया तैसे ही एक दूसरे ने खींच लिया और दूसरी तरफ। घोड़े की चढ़ाई यदि अच्छे घोड़े हो ना, जैसे देखा होगा सब पहुंचेगा। ये घोड़े शत्रु वाले और ये सब नहीं, मिलिट्री वाले भी नहीं। उस समय हमने तुम लोग जो पहले यदि देखा होगा, पहले तो बड़े बड़ा शौक से लोग घोड़े का, जैसे चेतक और पीतल की घोड़ी बिंदीला, बिंदला उसका नाम। वो मन से बातचीत करती, आकाश में उड़ जाती, जहां काटे वहां पर चल गया। चेतक एकदम हाथी के ऊपर मस्तक रख करके एकदम खड़ा हो गया और उन्होंने अच्छा चला के बाईचांस उसको बचना था, बच गया। ऐसे ही जंगल घोड़े को लगाम कस करके और ले करके चाबुक दे रहे हैं और उसको उधर दे जा रहे हैं, इसे में दूसरे ने पकड़ लिया, दूसरी तरफ मोड़ दिया। कृष्ण घोड़ों को हाथ रहे हैं अर्जुन को, देखा ना कैसे वो मुख से कर रहे हैं और चिन्हित कर रहे हैं, और एक तरफ में ओर दे रहा है, दूसरी तरफ घोड़े का प्राण नहीं बचेगा। पांचों तरफ से उनको खाएंगे, एक मन रूपी घोड़ा। और ये पांच अश्वारोही कौन है? इंद्रियां। ये इंद्रियां हम लोगों को, बद्ध जीवों को संसार के बीच में फंसा करके सदा के लिए चौपट कर दी। और इंद्रिया यदि कृष्ण के तरफ में हो, ललक के साथ में ऐसे दौड़े, तब समझा जाएंगे कि हमारा ये चैतन्य महापुरुष। हम लोगों को इतना नहीं होगा, किंतु हमारे स्वभाव में जितना है, जैसे पीछे में हो रहा है वैसे उसमें तक चलना तो कहीं बस आगे आगे बंधा कल
Thank you. Thank you.